समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे में। आज मैं आपके साथ हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं नीना आर्कल। प्रोग्राम के आज के अंक में भी होंगे दुनिया भर के और देश के समाचार, आपको बताएंगे मौसम का हाल और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी और जानेंगे कि आज का दिन खास क्यों है। इसके अलावा उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग आपको भी नीना।
हेलो सर फिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 19th of August 2025।
जी बिल्कुल नीना, कार्यक्रम में ये सब होगा लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। इसके अंतर्गत जीवन में आसानी, कारोबार सुगमता और समावेशी समृद्धि के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री को शासन में सरलता, आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने और इन उपायों से नागरिकों के लिए सीधा लाभ सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी गई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बैठक में उपस्थित रहे। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्री राधाकृष्णन ने कल शाम नई दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल के नेताओं के साथ शिष्टाचार बैठक की। बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी एनडीए नेता नामांकन दाखिल करने के समय उपस्थित रहेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होगी, इसमें सभी नेताओं का श्री सीपी राधाकृष्णन से औपचारिक परिचय कराया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति पद के लिए श्री राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in New Delhi yesterday. In his opening remarks during the meeting, Dr. Jaishankar stressed on three mutuals, respect, sensitivity and interest, to move ahead from difficult period in bilateral ties.
Having seen a difficult period in our relationship, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict.
The talks covered economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity and bilateral exchanges. Dr. Jaishankar said the Chinese foreign minister will also be discussing border issues with special representative and national security advisor Ajit Doval today. He added that this is very important because the basis for any positive momentum in the bilateral ties is the ability to jointly maintain peace and tranquility in the border areas. He said it is also essential that the de-escalation process moves forward. The Chinese foreign minister arrived in New Delhi yesterday on a two-day visit to India. National Highways Authority of India, NHAI, has taken strict action against a toll collection agency for misbehaving with army personnel on toll plaza deployed at Bhuni Toll Plaza on Meerut, Karnal. NHAI has imposed a penalty of 20 lakhs on the toll collecting firm. In a statement, the Ministry of Road Transport and Highways called it a breach of the contract agreement and the agency's failure to manage the situation and ensure staff discipline. Further, NHAI has initiated the process of terminating and debarring the toll collection firm from future participation in toll plaza bides. U.S. President Donald Trump has announced that he will arrange face-to-face talks between the Russian and Ukrainian presidents to help end the war in Ukraine. On his Truth Social platform, Trump said that he spoke with Russian President Vladimir Putin after hosting Ukrainian President Volodymyr Zelensky and other European leaders at the White House last night. U.S. President said he has begun the arrangements for a meeting between President Putin and Ukrainian leader Zelensky at a location to be determined. Trump said that the Putin-Zelensky talks would be followed by a trilateral summit involving himself and his two counterparts. He said Vice President J.D. Vance, Secretary of State Marco Rubio, and Special Envoy Steve Witkoff are coordinating with Moscow and Kyiv in this regard. During his meeting with Zelensky and European leaders, Trump took a small break to call Putin. Putin told Trump of his readiness to meet Zelensky.
और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया. श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का भारत लगातार आह्वान करता रहा है. श्री मोदी ने आने वाले दिनों में भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत होने की आशा व्यक्त की.
And now news from the world of sports. India's Girish Gupta has clinched gold in the 10-meter air pistol men youth event at Asian Shooting Championship in Shymkent, Kazakhstan. We have a report.
The 17-year-old Girish Gupta shot 241.3 in the final, surpassing compatriot Dev Pratap, who shot 238.6 to win silver. India concluded day one with 2 gold and 3 silver medals. Kapil Paisla bagged gold in the junior men's air pistol, and both the senior and junior men's teams earned silver medals. In tennis, world number 2 Carlos Alcaraz claimed his maiden Cincinnati Open title in Ohio after defending champion in world number 1 Jannik Sinner retired due to illness. The final lasted just 23 minutes as Sinner called for the doctor and then conceded the match. Alcaraz becomes the third Spaniard to win the Cincinnati title, following the footsteps of Carlos Moya and Rafael Nadal. A 24-member Indian archery squad is all set for the World Youth Championship 2025, kicking off today in Winnipeg, Canada. The tournament will run until 24th of this month and features 570 top youth archers from 63 countries competing in recurve and compound disciplines across under 18 and under 21 categories. The 19th edition of the biennial event includes individual, team and mixed teams formats for both men and women. Union Minister Kiran Rijiju has congratulated Hilang Yajik, an emerging woman bodybuilder from Arunachal Pradesh, for winning a gold and silver medal at South Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship held in Thimphu, Bhutan. Rijiju, who represents Arunachal Pradesh in the parliament and is a former sports minister, praised Yajik's achievement and offered his blessings and best wishes for her future competitions. Jigyasa Pandey from Sports Desk.
श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब आपको देंगे महानगरों का हाल. शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, जिनके बारे में बताएंगी नीना.
यस सर फिरोजी, ऑन मंडे संतोष कुमार सारंगी, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड डॉक्टर एन कलई सेल्वी, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR एंड सेक्रेटरी DSIR, विजिटेड CSIR SERC एंड CSIR CESCRI चेन्नई यूनिट एट द CSIR मद्रास कॉम्प्लेक्स. ड्यूरिंग द विजिट, डॉक्टर एन आनंदवल्ली प्रेजेंटेड द अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर R&D प्लान्स ऑफ CSIR. Dr. M. Kirtana outlined the center's multidisciplinary renewable energy research, including developments in wind, solar, and hydroelectric energy, as well as ongoing work in carbon capture, utilization, and storage. Some more from Chennai. IIT Madras has indigenously developed India's first silicon photonics-based high-speed quantum random number generator, QRNG, and licensed it to Indrarka Quantum Technologies Private Limited in a 1 crore rupees deal. the technology developed at the Center for Programmable Photonic Integrated Circuits and Systems marks a major step in advancing India's quantum innovation ecosystem. Professor V. Kamakoti, Director of IIT Madras, emphasized the importance of indigenous development in critical technologies like silicon photonics, which play a key role in secure computing and communication. Moving over to Bengaluru, Preeti Gelot, Special Commissioner for Forest, Environment and Climate Change at BBMP, encouraged student participation in climate action during an awareness drive in Bengaluru. She emphasized the role of youth in addressing climate change through simple actions like conserving water, reducing plastic use, and minimizing air conditioning. She proposed forming climate action clubs in schools and colleges to foster engagement, noting that 770 institutions have registered so far. An annual activity schedule will be published on BengaluruClimateActionsClub.in. Students also held discussions on water, waste, energy and greening, sharing insights and challenges. News from Hyderabad now. Press Registrar General of India, Yogesh Baweja, announced the launch of the Press Seva Portal as a single-window solution to streamline newspaper and periodical registrations, enhancing transparency and ease of doing business. Speaking at Vartalap, organized by PIB Hyderabad, he addressed publishers' concerns. Additional Director General Shruti Patil noted this was Telangana's first such interactive session and announced a forthcoming helpline for publishers. Deputy Press Registrar Ashutosh Mole emphasized the fully online registration process since March last year and advised publishers to use the PRGI portal directly, noting applications will be deemed approved if unanswered within 60 days. And now, what do we have from Delhi, Mumbai, Kolkata, Sarfarozi?
Ji, Neena, sabse pehle baat karenge Rajdhani Delhi ki. Delhi Sarkar ke Delhi School Shiksha Adhiniyam 2025 ko Uprajyapal Vinay Kumar Saxena ne swikriti de di hai. Mukhyamantri Rekha Gupta ne jankari di ki manzoori milne ke baad Sarkar ne ise adhisuchit kar diya hai. दिल्ली विधानसभा में 8 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान ये विधेयक पारित किया गया था. ब्यौरा हमारे संवाददाता आदर्श से.
इस कानून के तहत अब किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोतरी के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है. विवादित शुल्क के लिए छात्रों के विरुद्ध दंडनात्मक कार्रवाई पर रोक लग गई है. वहीं निर्धारित फीस 3 वर्षों तक स्थायी रहेगी, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ का असर कम होने का अनुमान है. प्रत्येक स्कूल में एक फीस समिति के गठन पर भी बल दिया गया है, जिसमें प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक, महिलाएं और वंचित वर्ग के लोग शामिल होंगे. इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा. मंत्री ने जानकारी दी कि यह कानून अब शहर में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाएगा और स्कूलों की फीस निर्धारण में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा. मुख्यमंत्री ने इस दौरान आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली सरकार की शिक्षा नीतियों की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों ने इस मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते अभिभावकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि फीस निर्धारण में अभिभावकों की भूमिका अब बढ़ जाएगी, जो पहले बेहद सीमित थी.
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अगस्त में प्रतिदिन 348 टन ठोस अपशिष्ट उठाया है. नगर पालिका के अनुसार ये पिछले महीने के मुकाबले 7.08% की वृद्धि दर्शाता है. स्वतंत्रता दिवस से पहले शुरू किए गए इस पहल के अंतर्गत एनडीएमसी क्षेत्र में 15 अगस्त तक 413 स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए. और नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी आज एक जीवंत कठपुतली प्रदर्शन आजादी के रंग प्रस्तुत करेगी. ये कार्यक्रम सुबह 10:30 रविन्द्र भवन के मेघदूत थिएटर 3 में आयोजित होगा. और अब चल रहे हैं मुंबई की ओर. मुंबई में महिला आयोग प्रमुखों और सदस्यों के लिए 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र महिला आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में अंतर्राज्यीय सहयोग को मजबूत करने, महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और राष्ट्रव्यापी कार्य योजना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में लगभग 160 गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. नगर और औद्योगिक विकास निगम ने मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए अपने मुख्यालय में हिरकणी कक्ष नामक एक विशेष सुविधा शुरू की है। निगम ने बताया कि इस केंद्र में स्तनपान, पालने, खिलौने, विश्राम स्थल और आवश्यक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य मातृत्व काल के दौरान महिलाओं का शारीरिक और मानसिक आराम सुनिश्चित करना और कार्यस्थल पर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। और एक खबर कोलकाता से भी है। कोलकाता प्रेस क्लब में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कई पत्रकारों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मीडिया में इसका नैतिक उपयोग, एआई टूल को निर्देश देने वाली प्रॉम्प्टिंग पद्धति के इस्तेमाल पर चर्चा शामिल थी। और अब बात करते हैं मौसम की। सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की बात करें तो गरज के साथ यहां बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान के 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और नीना, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
यस सर फिरोजी, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, द वेदर रिपोर्ट is from Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 19 degrees Celsius and maximum will be around 25 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover between minimum of 22 degrees and a maximum of 27 degrees Celsius.
श्रोताओं, अब कार्यक्रम का वो पन्ना आ चुका है जहां हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और आपको बताते हैं कि आज का दिन यानी 19 अगस्त खास क्यों है और आज के दिन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी। सबसे पहले बात कर रहे हैं विश्व मानवतावादी दिवस की, जो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में हजारों लोग पूरी दुनिया में मानवीय काम करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जरूरतमंदों की मदद करने वाले मानवतावादी काम किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर होते हैं और ऐसे काम करने वाले हीरो अपनी पूरी जिंदगी मानवता की सेवा में खपा देते हैं। और आज का ये दिन यानी विश्व मानवतावादी दिवस के मौके पर हम इन नायकों और उनके बलिदानों को याद करते हैं।
On 19th August, we mark World Humanitarian Day, a time to honor those who step into cries to help others and to stand with the millions of people whose lives hang in the balance.
World Humanitarian Day is August 19th, a special day dedicated to recognizing the commitment and courage of humanitarian aid workers everywhere. Being an aid worker can be rewarding, but also costly, such as injury, abduction, detention, harassment, and death. Last year was the deadliest year on record for humanitarian aid workers, with 383 killed. Sadly, in 2025, this trend continues, as 248 aid workers have lost their lives in the first 7 months of the year. To honor humanitarians killed and injured in the course of their work, we ask disaster-ready learners to tell us about a loved one, a friend, or a colleague who lost their life in service to those most in need.
On 19th August 2003, a bomb attack on Canal Hotel in Baghdad, Iraq, killed 22 humanitarian and workers, including the UN Special Representative of Secretary General of Iraq, Sergio Vieira de Mello. This year, the message is clear. The humanitarian system is stretched to its limits, underfunded and overwhelmed under attack. In 2024 alone, with 380 humanitarian workers were killed, some in the line of duty, others in their homes. Hundreds more have been injured, kidnapped or detained, and there is reason to fear 2025 could be worse. And Sir Firozi, today is World Photography Day. It is observed every year on August 19 to celebrate the art, science and influence of photography across the world.
जी श्रोताओं, हर साल 19 अगस्त को दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये दिन फोटोग्राफी के उन शुरुआती दिनों को याद करने का अवसर है जब इस अद्भुत कला का जन्म हुआ था, और साथ ही ये आधुनिक युग में इसकी असीमित संभावनाओं को भी दर्शाता है।
And photographs tell stories, Alfirozi.
जी बिल्कुल, और नीना कहते हैं कि एक पिक्चर जो है वो हजार शब्दों के बराबर बात कहती है।
Absolutely. This special occasion encourages people of all ages to explore the power of images, capture meaningful moments and express themselves through the lens. It highlights photography's role in preserving culture, documenting history and connecting people globally. The first World Photography Day was held on August 19, 2010. It was on this day that nearly 270 photographers shared their pictures in a global online gallery. People from all over the country, 100 countries visited the online gallery. This event marked the first official World Photography Day. Celebrating World Photography Day 2025 can be fun and meaningful for everyone.
जी बिल्कुल नीना, और अपने श्रोताओं को कुछ और घटनाओं की भी जानकारी दे देते हैं जो आज के दिन हुई।
In 1600, Akbar captured Ahmednagar. In 1757, the first rupee coin was minted in Calcutta by the East India Company.
और 19 अगस्त को आज ही के दिन वैज्ञानिक गेल बॉर्डन ने दूध को ठंडा करने की प्रक्रिया का पेटेंट कराया।
In 1909, the first race at the Indianapolis Motor Speedway was held. In 1911, Leonardo da Vinci's Mona Lisa was stolen from Louvre by three Italian handymen. In 1960, the Soviet Union launched Sputnik 5 into space.
और 1964 में आज ही के दिन संचार उपग्रह सिनकॉम 3 प्रक्षेपित किया गया। आज ही के दिन 1966 में तुर्की में भूकंप से लगभग 2400 लोग मारे गए।
In 1964, NASA launched सिनकॉम 3, the first geostationary satellite. It allowed live TV broadcast of the Tokyo Olympic Games to the US.
और 1973 में आज ही के दिन फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया।
In 1976, Nagarjuna Sagar University established Andhra Pradesh. And in 1999, India's role in ASEAN ARF is lauded at a colloquium in Singapore.
श्रोताओं, अब याद कर रही हैं उन खास हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या हमसे जुदा हुए। सबसे पहले बात कर रही हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ये हिंदी के एकांकिकारों में इनका विशेष स्थान है। प्रसिद्ध नाटककार रहे ये। इन्होंने प्रचुर मात्रा में गद्य और पद्य दोनों में साहित्य सृजन किया। इनकी मुख्य रचनाओं में अंतर्जगत, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें आदि शामिल हैं।
टुडे वी रिमेम्बर एंथनी डेविड लेटन स्कॉट, हु वाज एन इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। टोनी स्कॉट मेड हिज थिएट्रिकल फिल्म डेब्यू विद द हंगर। ही वेंट ऑन टू डायरेक्ट हाईली सक्सेसफुल एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म्स सच एज टॉप गन, बेवरली हिल्स कॉप 2, डेज ऑफ थंडर, द लास्ट बॉय स्काउट, ट्रू रोमांस, Crimson Tide, Enemy of the State, Man of Fire, Deja Vu, and Unstoppable. Dear listeners, here's an excerpt from his movie, Top Gun.
We happened to see a MiG-28 do a 4G negative dive.
Where did you see this?
That's classified.
It's what?
It's classified? I could tell you, but then I'd have to kill you.
Lieutenant, I have top secret clearance. The Pentagon sees to it that I know more than you.
Oh, ma'am, it doesn't seem so in this case now, does it?
So, Lieutenant, where exactly were you?
आज मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी जी की पुण्यतिथि है, जिन्हें हम खयाम के नाम से भी जानते हैं। ये भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। खयाम बॉलीवुड के ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया, मगर उनके गीत और धुनें अमर रह गईं। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 40 साल काम किया और 35 फिल्मों में संगीत दिया। खयाम ने शर्मा जी नाम से भी कुछ फिल्मों में संगीत दिया है। 1977 में इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार से नवाजा गया। 1907 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया और फिर 2011 में पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए। इन्होंने क्लासिक फिल्म कभी कभी और उमराव जान समेत फुटपाथ, फिर सुबह होगी, शोला और शबनम जैसी फिल्मों के गीतों के लिए संगीत दिया।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बना
फिर छिड़ी रात बात फूलों की
रात है या बारात फूलों की रात है या बारात फूलों की.
ऑटो फ्रैंक was a German businessman and the father of Anne Frank. He edited and published the first edition of her diary in 1947 and advised on its later theatrical and cinematic adaptations. After Anne Frank's death was confirmed in the summer of 1945, her diary and papers were given to Otto Frank, who had rescued them from the ransacked hiding place. Let's listen to what Otto Frank has to convey through the diary of a young girl.
I only could see from the diary. And my conclusion is, as I had been in very, very good terms with Anna, that most parents don't know really their children. And so I know, too, that in reading the diary, parents and teachers will learn a lot. To build up a future, you have to know the past.
आज उत्पल दत्त जी की भी पुण्यतिथि है. ये प्रसिद्ध अभिनेता थे. वर्ष 1989 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल में इनके द्वारा निभाया गया भवानी शंकर का शानदार हास्य अभिनय आज भी याद किया जाता है. 1950 में मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने इन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में लीड रोल दिया, जिसे काफी सराहा गया. गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी और शौकीन आदि इनकी अभिनीत कुछ मशहूर फिल्में हैं. आइए सुनते हैं इनकी फिल्म गोलमाल से ही ये डायलॉग.
आपका भी कोई जुड़वा भाई है क्या जो यहाँ माली का काम करता है?
नहीं, मेरे यहाँ कोई माली वाली नहीं है. मैं खुद ही अपना बगीचा संभालता हूँ.
अरे रे 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 रे, तब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी.
क्या?
यू नो, मैंने आपको बुड्ढा कह दिया.
क्या हुआ, बुड्ढा तो मैं हूँ ही.
हाँ, बुड्ढे तो आप हैं ही, लेकिन यू नो, जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, वैसे ही बुड्ढे को बुड्ढा नहीं कहना चाहिए. इससे उसके मन को ठेस पहुंचती है. Am I right?
Sit down. Thank you. Thank you, sir. नाम क्या है आपका?
लकी. लकी शर्मा.
लकी?
वैसे नाम है लक्ष्मण प्रसाद, लेकिन यार दोस्त मुझे लकी कहते हैं. आप भी वही कहिए.
नहीं, मैं लक्ष्मण प्रसाद ही कहूंगा.
As you please, sir. आपकी मर्जी. वैसे चाहे तो आप मुझे लक्ष्मण प्रसाद, दशरथ प्रसाद शर्मा भी कह सकते हैं.
Matthew Perry is a Canadian-American actor, comedian, and playwright who gained worldwide recognition for his role as Chandler Bing on the NBC television sitcom Friends, which ran from 1994 to 2004. Here's an excerpt from his movie Fools Rush In with co-star Salma Hayek.
There was nothing I could do. The job starts July 1st.
Tell them to wait.
I can't do that.
Can't or won't?
I've worked too long, too hard to
just... what? To share your life with someone who loves you, who cares for you? Alex, you have to be there every day.
What do you think I've been killing myself for?
Oh, come on, you knew about this for a month, but you don't.
Satya Narayan Nadella is an Indian-born American business executive who is the chairman and chief executive officer of Microsoft, who celebrates his birthday. And we have Sudhamurthy, who is an Indian educator, author and philanthropist. She is the founder, chairperson of the non-profit charitable organization Infosys Foundation. Her childhood experiences form the historical basis for her first notable work entitled How I Taught My Grandmother, Wise and Otherwise and Other Stories. Here are some pearls of wisdom from the legend.
I just wanted to tell you, if you don't discipline when you are school or in college, you pay a heavy price later part of your life. Discipline, like coming up in a proper way, writing properly, talking properly, communicating properly, respecting people properly, this really helps a long way in your life.
आज अब्दुल राशिद खान जी की जयंती है. ये प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे. अब्दुल राशिद खान का जन्म 19 अगस्त 1908 को रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ. इन्हें वर्ष 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 105 वर्ष की उम्र में पद्म भूषण पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति रहे. आइए सुनते हैं इनका ये प्रदर्शन.
ش
श्रोताओं, समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सर फिरोजी और नीना अर्कल को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.